ओम शांति। जो संडे की चलने वाली मुरली है, जो मुरली की डेट है 19/12/84 जो संडे को चलेगी, उसके ऊपर जो पूरी मुरली के बाद कुमारियों का ग्रुप है एक और दो, उसमें से पहला ग्रुप का आज वर्णन करेंगे। तो 17 जून 19 को डायमंड हॉल में क्या हुआ, कुमारियों का समर्पण समारोह। 210 कुमारियों ने शिव परमात्मा के आगे अपना समर्पण किया, अर्थात अलौकिक, इसको विवाह कहे या गंधर्व विवाह कहे, किया। तो शास्त्रों में भी इसकी कहानी दिखाते हैं कि पार्वती ने, हिमाचल पुत्री थी पार्वती, उसमें हिमाचल पर्वत पर या हिमालय पर्वत पर तपस्या की, कई यानी जन्मों तपस्या की, ऐसा वर्णन है, उसी जन्म में लेकिन कई वर्ष तपस्या की, बचपन से ही तपस्या में लग गई थी एक शिव को पाने के लिए। लेकिन आखिर शिव भी तपस्या में थे तो प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो फिर भी थक गई, तो थक जाती है कि इतना होने के बाद भी। फिर एक उसको आइडिया था कि नृत्य करती है पार्वती, शायद इससे काम चल जाएगा, तो नृत्य भी करने के बाद थक जाती है, तो थकते थकते वो गिर जाती है, तो गिर जाती है, बेशुद्ध हो जाती है, तब शिव प्रसन्न होते हैं और उसको उठाते हैं। तो ये कहानी हम मनुष्य आत्माओं की है, हमने ही 63 जन्म तपस्या की एक शिव को पाने के लिए, भले हम पहचान नहीं पाते थे लेकिन गुप्त रीति से उसको याद करते थे। तो जब थक गए, हमने छोड़ दिया भक्ति करना, छोड़ो बहुत मेहनत की, तब शिव बाबा आए और अभी हमें उठा रहे, है ना, सबको नंबर वार उठा रहे जिन्होंने जैसी तपस्या की। तो वही हम, वही यादगार ये शास्त्रों में गई है, तो ये नसीहत भी बाप दादा हमें दिला रहे। तो इस मुरली में कुमारियों से भी यही बाबा ने कहा कि आप कमाल करने वाली कुमारियां हो, साधारण कुमारियां नहीं हो, अलौकिक कुमारियां हो। जैसे उसमें बाबा ने, जैसे लौकिक कुमारियां होती है तो देवान में आकर गिराती है, नीचे गिराती है, और बाबा ने कहा कि आप तो अलौकिक कुमारियां सबको ऊपर उठाती हो, स्वयं भी उठती है, और तो स्वयं भी उड़ती कला में जाती हो तो दूसरों को भी उड़ाती हो, तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ कुमारियां हो, अलौकिक कुमारियां हो। तो ऐसे बाबा अभी विशेषताएं देख कुमारियों को उठाते हैं, नशा चढ़ाते, स्वयं भी गिराती है, जैसे देवाभिमान में आकर, जैसे आजकल की कुमारियां सहेलियों के साथ सिनेमा वगैरह देखने जाती है फैशन के द्वारा, तो ये स्कूल की कुमारियां, कॉलेज की कुमारियां, इसमें ये देखने में आता है, तो ये देवभान में लाती है। लेकिन बाबा ने तो एकदम अलौकिक कुमारियां बना दिया, श्रेष्ठ कुमारियां, कुछ कमाल करने वाली कुमारियां, शेरनी शक्ति बना दिया। बाबा ने कई मुरलियों में भी वर्णन किया कि आप तो बकरी नहीं हो, बनने वाली नहीं हो, आप तो शेरनी हो। तो ऐसे अनेक मुरलियों में वर्णन किया है। तो बाबा कहते हैं कि आप तो सबको सर्व बंधनों से छुड़ाने वाली हो, निर्बंधन कुमारियां हो। तो अभी जैसे वो कुमारियां नौकरी करने की सोचती है, लेकिन आप तो नौकरी से भी छूटने वाली हो, नौकरी की टोकरी नहीं, विश्व कल्याण का ताज पहनने वाली हो। तो लेकिन आजकल ऐसे कुमारियों को जॉब करना पड़ता है कुछ परिस्थितियों से, ऐसा तो नहीं है, बाकी करते हैं कुछ भी हो, लेकिन कोई कोई हमारे यहाँ होती सेंटर में रहने के लिए थोड़ा डरती है कि वहाँ झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है। हाँ, तो उसके हाँ तो वो बाबा उनके लिए कहा कि कच्ची कुमारी अपने पक्की कुमारियां बनना है तो समर्पण पूरा एक शिव के आगे, एक शिव दूसरा न कोई। हाँ, तो सर्व संबंधों का रस तो बाबा से मिल रहा है, तो फिर अनेक जो संबंधों के रस में क्यों जाए। जैसे भक्ति में गाया, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तो वो संबंध अभी प्रैक्टिकल में हमें निभाना है। तो फिर जो लौकिक दुनिया के जो संबंध है, जैसे उस संबंध में तो रस नहीं होना चाहिए ना, तो अभी एक बाप से ही सर्व संबंधों का रस लेना है। तो ऐसे सर्व संबंध एक बाप से, जैसे मीरा के लिए भी कहा गया है, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो हमारा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो इस प्रकार बाबा ने कुमारियों को याद दिलाए हैं। फिर कहा है कि कुमारियां अर्थात विजयी, और विजयी कुमारियां ही क्या होती है, गायन योग्य और पूजन योग्य होती है। तो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि जैसे नवरात्रि होती है तो उसमें कन्याओं का पूजन करते हैं, नौ कन्याओं का, तो उसमें वही यादगार है कि कन्या को पवित्रता के कारण देविया मानते हैं। तो कुमारी अर्थात देविया, तो ये यादगार जैसे चले आते हैं। फिर बाबा ने बोला कि कुमारिया भाषण करने वाली नहीं, अपने कर्म द्वारा भाषण करने वाली। दुनिया में तो अनेक प्रकार के भाषण करते हैं, जैसे कोई सत्संग होते हैं तो उसमें जैसे कोई को खुशी करने का भाषण करते हैं, कोई वक्ता होता है तो वो दर्शक श्रोताओं को खुश कर देते हैं अपने भाषण के द्वारा। कोई रुलाने का कार्य करते हैं, रुला देते हैं श्रोताओं को। लेकिन हम बाबा के बच्चे, जैसे बाबा ने कुमारियों को बोला कि आप तो सर्वश्रेष्ठ कुमारियां हो, अपने भाषण के द्वारा भाषणा दो, आप बोलते जाओ और वो वाणी से परे चले जाए, बाप की स्मृति में खो जाए। तो ऐसे बाबा ने खास उन कुमारियों को कहा है कि आप सबको बाप दादा के मतलब शक्तियों की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, ऐसे अनुभूति कराओ। तो इस प्रकार बाबा ने कुमारियों को बोला। जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि कुमारियां दोनों कुल का उद्धार करती है, तो यहाँ तो वेद का कुल है, ब्राह्मण कुल। तो वैसे कहा भी गया कि ये किस कुल का उद्धार करने वाली, तो ये अभी ये शक्तियां उद्धार करती है। और सौ ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी ऐसा गया हुआ है, तो सौ तो क्या, अभी तो हजारों कुमारों को निकालती है कुमारियां, सौ ब्राह्मणों से उत्तम। तो ऐसी कुमारियां हो, बाबा ने ऐसे वर्णन किया है। और दहेज में क्या मिल जाता है कुमारियों को, सेंटर मिल जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन तो ये बनाया हुआ अपना, बाबा ने ऐसा कहा नहीं है। तो सेंटर मिल जाता है दहेज में, और सेवा मिल जाती है, और अनेकों को निकालने के निमित्त बन जाती है। तो ऐसे भाग्यवान कुमारियों का वर्णन बाबा ने किया हुआ है। हाँ, मुरली में कहा है कि कुमारिया अर्थात स्मृति के तिलकधारी, तिलक सदा लगा हुआ, कौन सा अविनाशी, स्मृति का तिलक, बाप की स्मृति का तिलक सदा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार थोड़ा वर्णन किया हुआ है बाबा ने। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का डेट तो बता ही दिया भाई ने, 19/12/84 की मुरली है, तीस तारीख को जो चलने वाली है, हाँ 36 को चलने वाली मुरली है। इसमें सेकेंड ग्रुप में बाबा ने कुमारियों के ऊपर ही विशेष फोकस दिया है कि कुमारी क्या है। बाबा ने बोला कि कुमारियों को तो बाबा ने सेना से तुलना किया है, जो जिस्मानी सेनाएं होते हैं उसी रीति से आप भी रूहानी सेना हो। तो कुमारियों के लिए बाबा ने कुमारियों को देख करके क्या बोला, ये झुंड है कुमारियों की, हाँ कुमारियों की झुंड है, सेना तैयार हो रही है। तो जब सेना तैयार हो जाती है तो फिर बाबा ने आगे बहुत कुछ बोला कि आप जब यहाँ पर बाबा के बच्चे बनते हो तो श्रेष्ठ कुमारियाँ बन जाती हो। तो श्रेष्ठ कुमारियाँ अर्थात कहीं न लड़ाई न कहीं झगड़ा, फिर भी आप विजयी बन जाते हो और स्वराज्य पा लेती हो। तो कोई हलचल नहीं करनी पड़ती, कोई लड़ाई के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बनानी पड़ती। और जो सेना में भी दिखाते हैं तीन प्रकार की जो सेनाएं होते हैं, है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना होते हैं। तो आप भी इस प्रकार की सेना हो, लेकिन आप जो काम करती हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो बाबा ने आगे भी बोला कि आप बाप के साथ में रहने वाली हो, बाप के संग में रहने वाली हो, इसीलिए आप किसी भी संग में नहीं आ सकते हो। किसी के भी संग का प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो सकता है। तो बाप के संग में रहने वाले किसी के संग में जब नहीं आती हो, अर्थात स्वप्न में भी आप कभी भी नहीं हिल सकती, स्वप्न में भी न हिलने की इतनी बड़ी बाबा ने, है ना, बोला है। तो इसका मतलब आगे भी बाबा ने बोला कि आप इस संसार में जब होते हो तो आपके द्वारा बाबा ने इतने बड़े टाइटल दिया कि आप क्या हो, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, श्रेष्ठ भाग्य की गुणगान गाई बाबा ने और श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाया कि आप इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। तो आपके लिए बहुत सारी चांस मिलती है सेवा के लिए और आप वो काम करती हो जो आपको मिला हुआ है। तो आज बाबा ने यह भी बोला उसमें कि आप जब सेवा करने जाती हो, सेवा बहुत मिलने वाला है आपको आगे जा करके, क्योंकि सेवा तो बहुत है लेकिन सेवादारी कम है, इसीलिए कुमारियों को सेवा का चांस मिलने वाला है। इसलिए बाबा ने यह भी बताया कि आप यह काम करती हो जिस कार्य के लिए आपको बाबा ने नियुक्त किया है, तो आगे जाकर के आप जैसे कि शक्तियां हो आप, और शक्तियां अर्थात कभी भी धोखा न देने वाली हो, शक्तियां हो अर्थात कभी भी सेना छोड़ करके न जाने वाली। तो इसके लिए बाबा ने उम्मीद रखा है कि कभी भी इस सेना से बाहर न जा सके, न जाए, इसके लिए बाबा ने बोला है। तो शिव की शक्तियां, सर्वशक्तियां आपके पास है, तो इस शक्ति के कारण से आप न स्वयं धोखे में आती हो न धोखा किसी को देती हो। तो इसलिए आगे बाबा ने भी बोला फिर आगे कि आप जब कुमारियां मैदान पर निकलेगी तो कितनी सारी सेवाएं हो जाएगी। तो सेवाधारी जब मैदान में निकलते हैं तो सेवाओं का बहुत बड़ा चांस भी है, कुमारियों को बहुत अच्छा चांस मिलता है। हाँ, तो आगे बाबा ने जो जो दुनिया की सेनाओं के बारे में तुलना किया है कि जो बहादुर सेना होते हैं तो उनके लिए जब बहादुरी दिखाते हैं तो उनके लिए बैंड बजते हैं। जब आप फिर मैदान पर अभी तो आई नहीं हो, तो आप मैदान पर जब आओगे तो आपके भी खुशी के बैंड बजेंगे, हम बजाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने आगे भी बोला कि ये कुमारियां वो है जो लौकिक में भले कुमारियों के लिए कुछ भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियों की महानता है। कुमारियां सेंटर की रौनक है, कुमारियां इस घर का श्रृंगार है। और कुमारियों के लिए फिर आगे बाबा ने बोला जब कुमारियों को माताएं निकालती है तो माताओं के लिए बाबा ने क्या बोला कि माताओं के लिए कुमारियां लिप्त है, क्योंकि सहयोग मिल जाता है इसके, कुमारियां जब निकल जाती है तो माताओं को भी सपोर्ट मिलता है, और शुरू में तो सेंटर है ना, सेंटर चलाने वाली, गीता पाठशाला चलाने वाली कुमारियां माने माताएं होते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, माताओं को बाबा ने पहले माता गुरु कहा है, तो माता गुरु इसीलिए कहा है क्योंकि पहले माताओं के द्वारा ही गीता पाठशाला कहीं खोलते हैं तो कई कुमारियों को माताएं निकालती है, उसके बाद उनको स्वतः लिफ्ट मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि पहले माता गुरु है, तो बाबा ने भी माताओं को आगे रखा है, तो इसके कारण से आगे माताएं क्या करेगी कि उनका नाम आगे होगा, भविष्य में आने वाली दुनिया जब होगी तो उसमें उनका नाम वाला होगा। इसीलिए बाबा ने पूरी अगर मुरली देखा जाए तो कहीं बाबा ने सोमान दिलाए हैं, कहीं बाबा ने स्मृति दिलाई है कि आप क्या हो, क्या कर सकती हो, तो आपके द्वारा क्या होने वाला है, तो फिर सावधानी भी क्या है कि अगर आप बाप के साथ में होंगे, बाप को निरंतर बाप के संग में होंगे, तो आपको कोई भी प्रकार की संग आकर्षित नहीं कर सकता है। तो अगर ऊपर से नीचे तक अगर मुरली को देखा जाए तो वैरायटी शब्द डाला है बाबा ने उसमें, और इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट, जैसे कि कहीं इतनी अच्छी सोमान दिलाए कि अगर वो एक सोमान में अगर हम टिक जाते हैं तो सोमान को साकार करके कोई दिखाता है तो सोमान का कितना बड़ा वैल्यू है, और उस सोमान में टिकने से ही हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। तो सोमान ऐसी चीज है कि आंतरिक रूप से हम इतना कमजोर बन गए हैं, क्योंकि कमजोर हम तब बने हैं क्योंकि हमने जन्म जन्म से यहाँ पर जो सफर की है, तो हमारी सोच, हमारी मान्यता, हमारी जो धारणा, हमारी जो कमजोर सोच, तो धीरे धीरे बहुत दिन तक जब हम ऐसे विचार रखते हैं तो सीधे अंदर जा करके रिजर्व होके बैठा हुआ है, तो जैसे कि वो अंधेरी कोठरी एक्चुअल में देखा जाए। तो आज हम जो चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो अंदर में जितने गांठे बने हुए ना, पड़े हुए, वो चिंतन के द्वारा ही खोलते हैं उसको हम। तो इसीलिए विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा शायद ही कभी छोड़ता होगा एक आध मुरली, नहीं तो हर बार मुरली में आता है कि विचार सागर मंथन करो, क्योंकि संकल्प द्वारा ही, विचार द्वारा ही वो गांठे बने हैं 63 जन्म। तो विचार सागर मंथन जितना करते हैं तो गांठे अपने आप से खुलते जाते हैं। तो ये गांठे खोलने की भी तो टेक्निक पहला भी सुनाए थे, क्योंकि 100 गांठ बनाए होते हैं लेकिन उस गांठ को खोलेंगे जिसके पास में टेक्निक नहीं है ना, तो गांठ और बढ़ता जाता है, लेकिन जिसको तरीका आता है तो उसको तरीके के आधार से एक ही सेकेंड में सब गांठा खोल सकता है। तो हमारे अंदर में भी इतनी सारी जो गांठ पड़ी है मन के अंदर में, तो इसीलिए वो कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बाहर आती रहती है, और संकल्प की जो धरातल पर आकर के बैठ जाती है बुद्धि में, तो हमको उससे निकलना, निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा ने जो हम सबको इतनी अच्छी पॉइंट बोला, तो कुमारियों के लिए है लेकिन करना तो सबको है ना, इसीलिए बहुत स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई कि उस सेना में तो रेपराइट करते हैं लेकिन यहाँ आप रेपराइट रहे लेकिन राइट ही राइट करते हो, लेपराइट तो है फिर भी आप राइट ही राइट करते हो, इसीलिए ये लेफ्ट है तो भी राइट है, इसीलिए बाबा ने ये स्मृति दिलाई है सदा राइट करने वाली, और सबको ये स्मृति दिलाने वाली कि आपकी स्थिति से, आपकी अवस्था से, और आप जब इस सृष्टि पर आ जाओगे तो आपके जीवन इतनी सुखी बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा, तो सबके लिए आप इस प्रकार के कर्तव्य करती हो। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तो कुमारियों को नशा होनी चाहिए, तो इसीलिए दादी ने एक बार क्लास कराई थी माताओं के लिए जो भट्टी में, तो उसमें बाबा ने क्या बोला था दादी ने कि माताएं ऐसी है कि अपनी कुमारियों को जैसे कि है ना, ऐसे उन लोगों को हाथ में दे देती है जैसे कि कसाई के हाथ में दे देती है, और जितना हो सके बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तो कोई कोई ऐसी भी माताएं होती है वो कसाई के हाथ में हवाले कर देती है। तो इसीलिए हम सबको, आपने आज भी इसमें आगे वाला मुरली में बोला था, जो हाँ, तो इसीलिए बाबा ने ये बोला कसाई का मतलब उसको कसाई को पूछना पड़े तो इसीलिए काटने वाला जो पशुओं को काटते हैं ना, हाँ उधर आपने आपको सबसे याद होने चाहिए लेकिन, तो इसीलिए हम सबको बाबा ने जितनी भी बातें बोली हैं, जितने भी सम्मान दिलाए, जितनी भी सावधानी दी है, एक एक चीजों को अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो फिर हम उस स्वरूप में टिक भी सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अच्छा ओम शांति।
आदर्श कुमारी, तो आदर्श कुमारी कहती एक जो जैसे स्कूल में आदर्श होते हैं स्टूडेंट में कि वो अनुशासन में चलते हैं, अनुशासन डिसिप्लिन होती है उसमें वो चलते हैं, वो एक बनाया हुआ होता है। और यहाँ अपने गॉडली यूनिवर्सिटी में जो नियम है आदर्श बनाए गए हैं, जैसे अमृत वेले से रात तक दिनचर्या बनाई हुई है, इस पर जो चलते हैं एक्यूरेट चलते हैं तो हाँ रात के लिए अमृत वेले से रात तक, हाँ अमृत चला 24/7 24 घंटा जो मैंने निद्रा भी योग निद्रा हो जाए, हाँ तो ये इस प्रकार जो चलते हैं तो इस नियम पर जो चलते हैं अनुशासन से चलते हैं तो वही आदर्श कुमारियाँ कहलाते हैं।
अच्छा, आदर्श कुमारियों की जैसे कि कई सारी निशानियाँ हैं, क्योंकि कोई कोई तो कुमारियाँ दूसरों के भरोसे से चलने की कोशिश करती है, कोई सपोर्ट मिले, कोई मुझे थोड़ा सा गाइड करे और कोई मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाए, है ना, उमंग उत्साह दिलाए, ऐसे भी कोई होते हैं जैसे कि पुश करके चलने वाली होती है। और कोई ऐसी कुमारियां होती है अपनी हिम्मत से, अपने साहस, अपनी विधि से, अपने तरीके से परिवार को भी कैसे कन्विंस करे और खुद भी कैसे बचे और उनको भी कैसे, उनकी भी ऐसा हमारे ऊपर इतना हावी न हो जाए, उनका भी पाप बन जाए और हम भी पाप के खाते में और गटर में चले जाए, इस हालत से वो नहीं चलेगी। बहुत आइडिया युक्ति से अपने आप को रक्षा करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए उसके पास में बहुत सारी आइडिया होती है। और कई सारे ऐसे भी देखे हम लोगों ने कि दूसरों के भरोसे चलने वाले वो ज्यादा समय चल नहीं सकते, जैसे बैलून की तरह कुछ आगे तक जाती है फिर फूस हो जाती है। तो इसी रीति से आदर्श कुमारी अर्थात स्वयं को पल पल फूक फूक के कदम चलाना है, क्योंकि आज की समय, आज का जो समय ऐसा चल रहा है कि इस समय पर अगर हम थोड़ी सी भी है ना दुनिया में भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें बाबा ने अगले वाली उन्होंने जो मुरली रिपीट की थी तो उसमें देहबान में आने के लिए कितने सारे सिंगार पेटार करके ऐसी हालत में लोगों को है ना आकर्षित करने के लिए, इसलिए दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए हम बहुत कुछ किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। आज के लोग की कुमारियां दुनिया में देखा जाए, इसलिए सबको देखते हुए जैसे कि कोई कुएं में जाता है तो उसको उसकी दर्द पीड़ा ऊपर देखने वाले लोग ही महसूस करते हैं ना, कुएं में गई ऐसी किस कितना पीड़ा भोग रही है, कितना इसको दर्द महसूस हो रहा है, तो मुझे उस कुएं में कोई अंदर जाके अनुभव करते हैं तो कोई दूर से ही अनुभव करते हैं, तो आदर्श कुमारी अर्थात देख करके अनुभव करने वाली। तो आदर्श कुमारी अर्थात बाबा ने तो हम सबको इतनी सारी तरीके बताए हैं कि जो योग्य बन करके जो योग्य बनाते हैं, समझदार होते हैं समझदार बनाते हैं, और वो जो उसके पास में जो टेक्निक है, आज हम कहीं को देखा है कोई 25 साल से भी सेंटर में है लेकिन उसको एक सेंटर मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई तो 5-6 साल में ही वो सेंटर ऐसे मिल जाता है और उस सेंटर को ऐसे चमका देते हैं कि जो 25 साल से जो सेंटर संभालने वाले भी उसको देखते देखते रह जाते हैं कि ये इसने क्या किया। तो इसीलिए हम जब तक योग्य ज्ञान ध्यान में जितना हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमें ये पद पोजिशन स्टेटस नहीं मिलेगा और कोई विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए दादी दीदी को भी विश्वास दिलाओ, ऐसे कई बार मुरली में और दादी ने क्लास में बोला है कुमारियों को, ऐसा विश्वास दिलाओ कि बाबा भी इनके ऊपर भरोसा कर सके। तो इसीलिए आदर्श कुमारी अर्थात योग्य समझदार लायक युक्ति युक्त चलने वाला, विधि अनुसार चलने वाला, मर्यादित जीवन जीने वाला कि कोई उंगली खड़ा कर न सके, तो इसलिए आदर्श कुमारी अर्थात हाँ इस तरीके से चलने वाली
कुमारियां। एक तो होता है जैसे माँ बाप ज्ञान में चल रहे तो सहज हो जाता है उनको, और दूसरा है कि खुद जजमेंट करके निकलती है कई कुमारियाँ, कि वो अपना डिसीजन लेती है, अपने विवेक से कार्य लेती है, तो इनमें जो डिसीजन लेने वाली जो कुमारियाँ होती है वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूरा परख सकती है,
सोच समझ के
चलते
उठाए गए कदम,
और एक अपने ऊपर जिम्मेवारी उठाते एक तरफ से कि हमें ऐसा करके दिखाना है। और जो माता पिता की पालना में निकली कुमारियां वो उनको थोड़ा सहज हो जाता है, तो उतना
मेहनत करने नहीं
करती और वो थोड़ा मतलब उतना नहीं आगे बढ़ पाते, लेकिन कई कई है कि ऐसे भी आगे बढ़ जाते हैं, तो हर एक में वो विशेषता है आगे बढ़ने की, लेकिन
आपने शक्ति को पहचानना पड़ेगा।
कहा जाता है कि धरनी के ऊपर वो होता है, तो वो धरनी बनानी पड़ती है, जैसे
धरनी का इफेक्ट होता है, लेकिन धरनी बनाने की जिम्मेवारी तो हमारी बनती
है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जंगल में मंगल करने वाली, जंगल में शिकार न हो ऐसा हो नहीं सकता, शिकार करने की युक्ति आनी चाहिए। तो कुमारियों के लिए खास बोला है बाबा ने कि कहां भी रहो लेकिन ऐसे अपने आचरण या कर्म द्वारा ही दूसरों को प्रेरणा दे सके कि बनना है तो ऐसा ही, इनके जैसा बनना है, जैसे कि ये देवी है, तो ऐसे द्वारा हम ये धरनी तैयार कर सकते हैं, और मतलब दूसरों को भी हम अपने प्रेरणा से ज्ञान में ला सकते हैं, बाप दादा के आगे समक्ष कर सकते। हाँ, जो कुमारियों को जो बंधन है तो उन्हें तो डरना नहीं है, हम तो हाँ डराने वाली है क्योंकि हमको 63 जन्म अभी हम इन बंधनों में रही, लेकिन अभी हमें निर्बंधन रहना है। हाँ, चाहे कितने भी युक्तियां करे लेकिन हमें किसके भी
बंधन में नहीं आना,
नहीं दुखाना नहीं है उनको, युक्ति से थोड़ा तोड़ निभाना भी पड़ेगा। जैसे कहा गया हिस्ट्री में कि जब दादियां, कई दादियों को बंधन बहुत थे, सात तालों में बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसी युक्ति रची थी कि उनको कहां से मुरली मिलती थी, चिमनी से, चिमनी के द्वारा जो धुआं निकालने की चिमनी, उस वहां मुरली डालते थे। और तो इस प्रकार हम सपोर्ट कर सकते जो भी बंधन में कुमारी है उनको भी, कि आजकल तो सहज साधन है मोबाइल के द्वारा भी निर्बंधन बना सकते हैं मतलब ऐसे मैसेज के द्वारा, तो ऐसे तो आजकल तो शायद नहीं है इतना बंधन वाली कुमारी है। अच्छा है तो
अपने अपने कमी कमजोरी से भी बहुत सारे बंधन खुदे मोल लेते हैं उसमें, क्योंकि खुदे वो समस्या मोल लेते हैं उसमें, क्योंकि अपनी कमजोरी आगे आती है और हम इतना स्ट्रोंग नहीं बन पाते हैं, और आपने कोई बातें ऐसे कोई युक्तियां नहीं अपनाते हैं, उसके कारण से अपने आप से वो समस्या क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कमजोर को तो कमजोरी आ ही जाएगी, और कमजोरी तब आती है जब हम कुछ कुछ अपने आप को मान लेते हैं, ठान लेते हैं, और फिर आगे क्या देखते हैं कि सेंटर में भी ऐसी हालत है, अगर वहाँ जाने से अच्छा यहीं करना ठीक है, सेंटर तो जा ही रहे आ ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बाबा कहा तो और साथ तो हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से ऐसे कमजोर संकल्प पाल के रखते, तो वो जो कमजोर संकल्प धीरे धीरे जैसे कि स्ट्रांग होती जाती है, और थोड़ी सी किसी की कमी कमजोरी कोई बहन जी किसी कारण से ऊपर नीचे किसी सेंटर में हो गया तो देखो वो गई थी तो ऐसी हालत हो गई, मेरी भी तो ऐसी हालत ना हो जाए, इस प्रकार के अपने आप से उदेड़ बोन में फंस जाते हैं, तो इस कारण से हिम्मत नहीं आती है, तो फिर यह हिम्मत जो नहीं कर पाए तो आगे जा करके सदा हम चल पाएंगे ये ऐसी कोई गुंजाइश मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन आज तक इस जजमेंट में जितने भी कुमारें रही है ना तो उनकी वो पुराने दुनिया में जाते हुए हमने सैकड़ों को देखा है, तो इसलिए इस बातों से हमको अभी से इतना मजबूत होना पड़ेगा, तो इसलिए
तो
तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हमें वहां जाने के बाद ये जानना पड़ेगा कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की गतिविधि क्या है, यहाँ मुझे कैसे एडजस्ट होना पड़ेगा, यहाँ मुझे कितनी आइडिया लगानी पड़ेगी, क्या बुद्धि लगाना पड़ेगा, युक्तियाँ क्या लगानी पड़ेगी उसमें। और उसमें एक तो होता है सेवा तो बढ़ती है, पेपर के रूप में भी आता है, और बड़ी बहनें भी थोड़ा सा परीक्षा करके ही तो बहनों को रखती है, और ज़्यादा समय नहीं चलता है वो। लेकिन जिस दिन हम बहनों का दिल जीत लेते हैं और हांजी बन करके हांजी का पाठ पक्का करते हैं, तो बहनें फिर उतना ज़्यादा समय उस सिचुएशन में नहीं रखती है। फिर वहाँ से हम अगर पास होकर के निकल गए तो फिर आगे तो फिर अपना तो सब कुछ सब दिल में जगह बना लिया दीदियों के साथ में, और बाबा से इतना प्यार हो। हाँ, व्यर्थता तो अभी हाँ उसका यही हाँ, और उसमें भी कई सारी बहनों को हम लोग ने देखा है छिपे छिपे तो स्थिति बना लेते, छोटा छोटा अपेक्षा, थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा सोमान का अभ्यास करके, मुझे इस बात में इतना इन्वॉल्व न होते हुए अपनी स्थिति को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो भी स्थिति के बल से हम जितना अंदर से मजबूती आती जाती है तो समस्या तो जैसे काली बादल सदर नहीं रहता, छट जाती है। इसी रीति से हमारी स्थिति जैसे मजबूत होगी तो स्थिति सब को हटा देगा और उस स्थान पर पहुंचा देगा। इसीलिए आंतरिक भी तपस्या करना पड़ेगा और किसी को ब्लेम और ये है ना ये से हमको थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और हम पुरानी दुनिया से और अपने लौकिक से भी अगर तुलना करने लग जाए तो उसमें जरूर कमजोरी आएगी, क्योंकि तो
वर्तमान समय नौकरी करनी चाहिए या सेंटर पर रहना चाहिए। एक तो एक हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, जैसे कोई कुमारी है उसका कोई भाई नहीं है या कोई कमाने वाला नहीं है और माता पिता हैं, तो एक जिम्मेवारी बनती है कि कुछ करके अपना चलाएं। उसके बाद जब निर्बंधन हो जाए तो हम सेंटर पर समर्पित हो सकते हैं।
हाँ,
सेवा के संबंध में जैसे
क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए?
हाँ, सेवा एक बाप दादा की सेवा है, हमें प्रत्यक्षता करना है। आपस में जैसे संबंध हो जाता है तो एक ज्यादा परिचय होने के कारण फिर आपस में ज्यादा हाँ पर्सनल बातों पर आ जाते हैं, तो उससे डिटेच रहना है। क्योंकि तो ये तो नहीं, ये तो नियम नहीं है साथ साथ रहने का,
सेंटर गैदरिंग में।
हाँ हाँ, अच्छा इस टाइप से। हाँ तो ये तो बाबा ने तो पहले से ही बताया हुआ है कि हमें तो आत्मिक स्मृति में रहना है, आत्मा भाई भाई समझ के रहना है, निमित्त मात्र सेवा के लिए हम हैं। और अगर हम अपनी मत चला के फिर देवान में फंसते हैं तो ये इसकी कड़ी सजा के भागीदार हम ही होंगे। जैसे एक मुरली आई थी 15 नवंबर 2003, उसमें बाबा ने कहा चाहे कोई कुमार हो या कुमारी हो, मतलब धर्मराज में ही छोड़ेगा,
मधुबन हो चाहे सेंटर
में
हो,
स्मृति में अपने को रखना है कि अगर हम देवान में फंसते हैं तो फिर ये अपना ही घाटा है, हम पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। ये स्मृति रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं।
स्मृति होते होते
हाँ स्मृति होती है तो फिर ये
सेवा करते हैं, तो मतलब कौन सी
बात? अच्छा, उसमें जैसे कि हमें इस बात का जरूर ध्यान देना है क्योंकि लक्ष्य सदा ही स्मृति में रहे, मैं क्या बनने वाली हूँ और मेरा क्या जिम्मेवारी है। और उस सारी चीज़ों में तो जैसे कि हमारी बड़ी दीदी ने भी ये सिखाया है कि 3 मिनट से ज़्यादा अगर कोई बातें होती है तो उस समय खूब परीक्षाएं ली जाती थी और उनको खबर लिया जाता था कि वो किस लिए क्या करने चाहते हो। तो डायरेक्ट पूछती थी दीदी, क्या शादी करने वाले हो क्या? डायरेक्ट हाँ दीदी की तो ऐसे आवाज़ होती थी कि ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम और भी कई दादियों को हमने देखा है कि इस बातों में खूब अटेंशन। और बड़ी दीदी ने तो बड़ी दादी ने तो एक तो बातें कम करना है और जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा दूरियां बनाना, और स्थिति और अवस्था इस व्यक्ति की क्या है, और सबसे पहले तो पेपर कैसे आती है एक आपस में कुमारियों का कुमार अथवा, तो बहने भी होती है ना, तो भाइयों के ऐसे गुणगान करने लगती है और भाई भी बहन भी भाई के गुणगान करने लगती है। तो ये समझना चाहिए कि अभी ये अपोजिट ध्रुव चालू हो चुका है। तो इस अपोजिट ध्रुव जैसे चुंबक होती है ना, एक ही पोल होते हैं तो विकर्षण का जो होता है, तो अगर आकर्षण पड़ रही है तो उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बातों से जितना जल्दी हो सके मुझे अपने को कवरेज करना है और इससे दूरियां कैसे बन सकता है। तो अगर ऐसे लटखड़ा जाते बड़ों का सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, और कोई ऐसे आत्माएं इस बातों से निकले हुए कहीं सारी समस्या तो कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन किसने इस परिस्थिति और समस्या से बाहर आकर के विजयी बने हैं, कुमारियों का। लेकिन ज्ञान तो माध्यम बन गया, लेकिन पुराने संस्कार वहां इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको हमें टेस्ट करना होगा कि उसमें यही है। लेकिन सूक्ष्म में जो छिपा हुआ जो संस्कार है ना, वो बीच में अटैक कर रही है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा और चेकिंग करनी पड़ेगी उसको कि मेरे अंदर ये संस्कार नहीं होता। तब फिर उसमें ये होता है, एक बार ठोकर खाए बिना वो ठाकुर नहीं बनता है। क्योंकि एक बार किसी न किसी बड़े लोगों से कोई अगर सीधा उसको अटैक कर लेता है, बोल देता है और इशारा देता है, उस समय हमको आत्मात चेंज करना पड़ेगा और उसको नेगेटिव रूप से वो भी ज्यादा समय। इसमें देखा गया है कि शुरू शुरू में सेंटर माँ बाप की प्यार पालना स्नेह से आए हुए भी नहीं होते ना, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं भी इस बातों से गुजरा हुआ हूँ। अभी उस बातों का जो है ना प्रकोप होता है कुछ दो चार महीना छः महीना ज्ञान की जो स्पष्टता न होने तक के लिए, हमको उसमें इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो उस समय थोड़ा छोड़ दे करके कुछ आगे सावधानी देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। थोड़ी बातें कहीं से सुनने को मिलता है तो उसमें अटेंशन दे करके जितना हो सके अपने को ठीक है, अब साथ में होते भी करना तो है, फिर भी हमारी स्थिति के ऊपर थोड़ा अगर फोकस देंगे तो बाबा की बातों की तरफ हमारा अटेंशन जाएगा, तो उस चीज साथ में होते भी अपने जैसा नहीं लगेगा। और उसमें जो बाबा ने संबंधों की बातें बताया, बाबा को कैसे हो सके दोस्त के रूप से कौन सा संबंध ज्यादा हमको आकर्षण कर रहा है, उस संबंध से बाबा को अपना बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला सीखनी पड़ेगी, और बाबा को तो किसी भी रूप से हम अपना बना सकते हैं, तो बीच में बाबा को रखना पड़ेगा। तो बाबा अगर होंगे तो और बातें नहीं आएगी।
तो जो भी परिस्थिति आती है कुमार या कुमारियों को, उस समय अपने को पेपर आया है ये समझना होगा और ये पेपर पास हो जाएगा, इसका भी कोई टर्निंग पॉइंट है? तो इस ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ अनुभव कराने के लिए आई है, तो ये अपने को स्मृति दिलाना है कि ये तो पार हो जाने वाली है। तो इस प्रकार हमें इन बातों पर ध्यान देना है। अच्छा,
ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कुमारियों की बात कही तो बंधन मन का होता। बाबा ने कहा कहते हो बाबा सर्व संबंध का सुख, कहते हैं बाबा आप सर्व संबंध का सुख लो मुझसे, कहने मात्र मत कह देते कि सर्व संबंध है तुझसे, लेकर चल साथ तू मुझको, अनहद सुख मिलेगा मुझसे। क्यों भूल जाते इस देह और देह के कारोबार में मुझको, शक्तिहीन बना देती है माया तुझे मुझसे अलग करके, यादों में कोई तेरे आ जाता है तो मुझसे अलग हो जाता है, तेरी हर सपनों को सच मैं करता हूँ, तेरे हर संकल्पों को मैं पढ़ता हूँ, तू रख साथ हर पल मुझे सर्व शक्तियां सर्व प्राप्तियां मिलेगी मुझसे, कहता हूँ मैं सर्व संबंध का सुख ले मुझसे, कदम कदम पर माया खड़ी है, कितना गिरेगी कितना उठेगी, एक बार हाथ देकर जन्मों जन्म की कमाई कर ले तू मुझसे, जन्मों जन्म की कमाई कर ले तू। सेंटर गुड़गांव में सेवा करती हूँ, बाबा ने मुझे नाम गरिमा दिया है, लेकिन ऐसे नाम लौकिक में जो नाम चलता है डेजी, बीके डेजी सर्टिफिकेट में। और सचिन भैया के लिए एक छोटा सा है, सचिन नाम है ना भैया का, तो स फोर स... नहीं, सागर से भी गहरा है चिंतन आपका, सागर से भी गहरा है चिंतन आपका, जी चित्त निर्मल स्वच्छ है आपका इतना, तब तो ठहर रहा है उस पर ज्ञान रत्न, स्वयं सरस्वती माँ की कृपा आप पर, ना नाम मान शान को किनारे कर, परमात्म प्यार में चलते रहते हैं अकेले शेर की तरह, वह हम सबके सचिन बेहतालिक, तो बजाओ।